बंदे मोमिन के दिल में जब नूर आता है ना, क्योंकि वही बिन काब की जो हम रिवायत कहते हैं कि उन्होंने कहा ये बंदे मोमिन की बात है कि जब इसके दिल में अल्लाह का नूर आता है तो कैफियत क्या होती है, तो कुछ ना कुछ तासरात होते होंगे ना। हम भी तो आखिर 18वें पारे पे पहुंच गए, क्या अभी तक हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे दिल में क्या है, कि अभी भी डामाडोल है, अभी भी शक है, अभी भी प्रेशराइज है, अभी भी संदेशे में कि कोई हमसे कुरान का ये ताल्लुक छुड़वा लेगा, अभी भी किसी को शक है कि हमारी सोच बदल रही है, तो समझ लें कि अभी नूर नहीं आया, अभी रोशनी नहीं आई। वरना याद रखिए कि जब दिल के अंदर ईमान आता है ना तो चारों तरफ चमकता है, नूर उनला नूर। बंदा मोमिन की जिंदगी का हर पहलू उससे खूबसूरत होगा, इधर उधर फैलता है, इबादत अच्छी, उसके मामलात अच्छे। और आप कहते हैं नहीं अभी तो काफी कमी है, तो फिर जरा सोच लीजिए कमिश्कात इनको। देखिए कि जो ताकचा बनता है ना उसके लिए दीवार को पहले खाली करना पड़ता है, निश बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर सुराख ना किया जाए दीवार में, उसको खाली ना किया जाए, तो चिराग रखने की जगह नहीं होती। इसी तरह जब तक हमारे दिल दुनिया की मोहब्बतों और दुनियादारियों और दुनिया के डर और दुनिया की ख्वाहिशात से खाली नहीं होंगे, अल्लाह की मोहब्बत का चिराग नहीं अंदर चलेगा। मादी चीज़ों से तवज्जो हटानी पड़ेगी, फिर अल्लाह की मोहब्बतों के चिराग जलाएंगे, फिर देखिए नूर उनला नूर होगा। बेजान चीज़ों की मोहब्बत निकाल कर अल्हय्युल कय्यूम की याद बसा के देखिए, फिर आप देखेंगे कि क्या होता है दिल की रौनक और दिल का हाल क्या है। कभी लालटेन देखी होगी अपने, पहले दौर में लोग जलाते थे। यहाँ जो जुजाजा का लफ्ज़ है ना, ये लालटेन का शीशा देख ले आप, देखिए कि किसी भी चिराग यानी ये ऊपर हमारे जो बल्ब भी लगा है, इसके भी तो ऊपर एक कवर लगा हुआ है ना। जो लोगों ने बल्ब खोल के देखे हो, आप इसका बाहर का कवर निकालें तो अंदर बिल्कुल छोटा सा बल्ब होगा। क्यों लगाया ये शीशा? शीशा यानी जुजाजा के दो मकासद होते हैं, एक है हिफाजत कि कोई चीज़ लगे तो फौरन ना टूटे, चलो पहले शीशा बाहर से टूट जाए फिर बल्ब पे जाए। लालटेन के भी यही हाल होता है कि शीशे की कवर को चोट लग गई तो कोई बात नहीं, अंदर जो एक दिया जल रहा है वो बच जाएगा। तो ये किसका मकसद होता है? शीशे का हिफाजत। और दूसरा इसका मकसद होता है मजीद चमक के लिए, क्योंकि शीशे की खूबी क्या है कि ये रिफ्लेक्ट करता है। अंदर से चिराग की छोटी सी लौ जब जलती है ना, तो उसकी किरणें जब शीशे से टकरा के वापस जाती है ना, तो वो रोशनी बढ़ जाती है। बस इसी चीज़ को अब आप समझ लीजिए कि यहाँ अगर हम इस मिसाल में देखें तो सुजाजा क्या है? शरीयत है। अल्लाह ने हमें एक चमकती हुई शरीयत दी है, बेदाग किस्म की, कोई हक तलफी नहीं, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई मर्दों को और औरतों को फ़र्क नहीं कर दिया, कोई औरतों पे पर्दे की पाबंदियाँ डाल के जुल्म नहीं किया, बिल्कुल अज़ुजाजतु का नहा कौकबुन दुर्रियुन, चमकती हुई शरीयत है हमारी, कोई इची बिची नहीं, कोई इधर की बात उधर नहीं, कोई सेकुलरिज्म नहीं, कोई सोशलिज्म नहीं। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी शरीयत हमें दी, हम जब इस शरीयत के अंदर रहते हैं ना, अब इमेजिन करें कि जब तक दिया शीशे की लालटेन के अंदर रहता है, नंबर एक महफूज भी है और दूसरी बात है कि उसकी चमक भी ज़्यादा है। बिल्कुल यही मिसाल ले लीजिए, जब तक मोमिन शरीयत के दायरे के अंदर रहकर अमल करता है तो वो सिक्योर भी है और वो चमकता भी है। जूँ ही आप शरीयत के दायरे से बाहर निकल के गलत शलत काम करने लगते हैं ना, कुछ अपने मन मानने तरीके से करते हैं, तो आप शैतान के तर निवाले बनते हैं, फिर वो आपको उचक के ले जाता है, फिर आपकी चमक कम हो जाती है। एक चमक वो है जो एक वज़ू करने वाले के चेहरे पे होती है, और एक वो है जो क़्यामत के दिन होगी, पुल सरात पे होगी। ये चमक कौन सी होगी? जिसने इस शरीयत के दायरे को अपने इर्द गिर्द रखा। फिर आप देखिए कि कभी आप कोई देखा हुआ फ़ानूस तसव्वुर में ला के देखें, फ़ानूस के नीचे कितनी लड़ियाँ लगी होती हैं, कितने उसके अंदर मोती लटक रहे होते हैं, अंदर एक दो बल्ब जले होते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि पूरा फानूस छमछम कर रहा है। क्रिस्टल को देख ले, उसके अंदर कट्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, जितने ज़्यादा कट होंगे ना उतनी उसके अंदर चमक ज़्यादा होगी। डायमंड आपको पता है क्या है? सिर्फ कट्स का नाम है। डायमंड असली शक्ल में काला होता है, लेकिन जौहरी उसको तराशता है, बस तराश ही उसकी बात है। एक ख़ास एंगल से वो डालते हैं कि रोशनी का एक कतरा जब उसके अंदर चला जाता है ना, तो वो अंदर ही घूमता रहता है। ये है डायमंड, आपने कभी पढ़ा होगा साइंस में जाके, अंदर उसके बस एक कतरा जाता है रोशनी का और वो चमकता ही रहता है, चमकता ही रहता है। इसी तरह याद रखे, बंदा मोमिन जितने मुश्किलात के कट्स में से निकलता है ना, जितनी उसको चोटें पड़ती हैं, जितनी तकलीफ आती है, अल्लाह के रास्ते में चलते चलते जितनी दफ़ा उसको पकड़ा जाता है उतनी चमक ज़्यादा आती है, और अल्लाह अपनी तरफ आने वालों को ज़रूर आजमाता है। वफतन ना कफतू न या मूसा, ए मूसा हमने तो तुझे बड़ा ही आजमाया। सुम जी ना का अला कदरिन, फिर तू बिल्कुल उस अंदाजे पे आ गया जैसा तुझे होना चाहिए था, फिर तू कट कट के सही प्योर डायमंड बन गया, फिर हमने तुझे अपने दीन के लिए चुना। अल्लाह हर एक को नहीं चुनता। अगर अल्लाह ने मुझे नहीं चुना ना, तो इसकी वजह यह है कि मैंने चुना जाना ही नहीं चाहा। सहाबे कराम का हाल क्या था कि जब उनको इस्लाम मिला, अल्लाह की मोहब्बत मिली, उन्होंने उसको ज़िंदगी के हर निज़ाम पर फिट किया, उसको तब्दील करना चाहा। हालात जैसे भी आए वो नहीं बदले। सच्चा मोमिन कभी नहीं बदलता। जैसे डायमंड को आप पाकिस्तान में जाके देखें वो भी डायमंड है, तब भी सऊदी अरब में जाके देखें तो डायमंड डायमंड ही है, और अमेरिका में ले जाएं, कनाडा में ले जाएं, नॉर्वे में ले आएं, वो डायमंड ही रहेगा। सच्चे लोग जो होते हैं ना, वो कभी अपना रंग नहीं बदलते। उनको बिल्कुल इस चीज़ की फिक्र ही नहीं होती कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ ले जाए जाने वाले हैं। बिल्कुल रंग ढंग नहीं बदलते। कच्ची बारिश की तरह पहली धुलाई में उनका रंग नहीं उड़ जाता। वो सिबगत अल्लाह ही के रंग में रंगे हुए लोग होते हैं। ऐसे लोग फिर जब खुद कहीं आते हैं तो दूसरों को भी चमकाते हैं। हम कहते हैं हम क्या करें, आज हमारे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। अल्लाह करे नहीं, देखो कौकबुन दुर्रियुन, तुम में से हर एक चमकता हुआ सितारा बन सकता है। अब देखिए, सितारे का तसव्वुर आते ही एक तो खूबसूरती का तसव्वुर आता है, एक बुलंदी का आता है। कहा मोमिन बनते हुए तुम भी खूबसूरत बन सकते हो, तुम भी बुलंद हो, तुम मोहसिन बन के देखो, अपना तज़किया करो। मोमिन जितना बुलंद किरदार होता है, छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, नहीं, मैंने खुद भी चमकना है और सितारे की तरह अंधेरी रात को चमकाना है। आप देखिए कि आज के दौर में अगर हम ये बातें पढ़ते सुनते हैं ना, तो फिर हमारा दिल करता है हाय मैं क्या करूं, मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी तो ताकत नहीं, मेरे तो घर में भी कोई मेरी मदद नहीं करता। तो आप सोचिए कि कोई बात नहीं, हम बड़े चिराग ना भी बन सकें, एक छोटा सा सितारा ही बन जाए। आप देखिए कि एक बड़ा चिराग होता है ना, उसकी बनिस्बत एक छोटा चिराग, अगर बिल्कुल आप मोमबत्ती सोच लें, लालटेन सोच लें, व्हाट्स एवर जो सोचे, गहरे से गहरे अंधेरे के अंदर जाके आप रख दें, वो उस अंधेरे को दूर कर देगा। कई छोटे छोटे चिराग मिलके एक बड़े चिराग के मुकाबले में रोशनी नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा चिराग अंधेरों में रोशनी कर देता है। अगर आज के दौर में अबू बकर नहीं मिलते, उमर नहीं मिलते, उस्मान नहीं मिलते, तो आप और मैं, हम तो छोटे छोटे चिराग बन सकते हैं। चिराग से चिराग जलाते जाएं, अपने घरों को रोशन करें, अपने मोहल्लों को करें, अपने इलाकों को करें। आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सारी खैर आएगी। बंदे मोमिन कहीं से गुजर जाए और वो जगह अंधेरी रहे, इम्पॉसिबल। बंदे मोमिन किसी जगह से गुजर जाए, वहाँ गुनाह होते रहे, इम्पॉसिबल। जिना होता रहे, बदकारियाँ होती रहे, लोग रिश्वत खाते रहे, नामुमकिन है ये। जिस तरह एक बल्ब के जलने से रोशनी आती है, इस तरह एक सच्चे मोमिन के होने से रोशनी आती है, फिर आज क्यों नहीं आ रही? हम तो कई बिलियन हो गए आज, उस दौर में तो एक था सिर्फ, और उससे बात शुरू हुई, वो सिद्दीक बना, उसके बाद साथ हुए, कई साल तक इस तरह चलता रहा सिलसिला, फिर एक उमर आया सिर्फ, एक जिसको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सा सितारा बन के, और कैसी रोशनी आई, लेकिन आज क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि ला शर्कियत वला गर्बिया से नहीं निकल पा रहे। नंबर एक, तासुबात से भरे हुए, हमने अपने आप को कोनों खुदरों में डाल दिया। इस जुमले से यहाँ पता चल गया कि मोमिन कभी मुतसब नहीं होता। देखिए, सच्चा ईमान वाला इल्म वालों से फैजयाब होता है, उनसे फ़ायदा लेता है, उनकी इज्जत करता है, लेकिन किसी की शख्सियत से चिपक नहीं जाता, किसी नाम, किसी गिरोह, किसी इदारे को ही पूरा दीन नहीं समझता। फिर तो वो सारी मोहब्बत उस गिरोह की हुई, वो तो उस इदारे की हुई, वो तो उस इंसान की हुई नहीं। उसकी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत का उजाला होता है। जिसके घर में अंधेरा होगा वो कहेगा कि मुझे सिर्फ फिलिप्स की बल्ब चाहिए, नहीं है तो नहीं लूँगा। वो कहेगा लाओ भाई जो भी है दे दो, मैं जाके अपने घर में लगाऊं ताकि रोशनी आए। जिस बंदे को ये फिक्र होगी ना कि नस्लें गिर रही हैं और चारों तरफ गंदगी और ताफुन है, वो तो कहेगा मुझे कुरान और सुन्नत मिलता है, जिससे मिलता है मैं ले लूँ। मुझे कुरान पढ़ाएंगे, मैं तैयार हूँ। मैं कुरान के लिए मदद करूँगा, मैं तैयार हूँ। फिर वो गिरोह बंदियों की तरफ नहीं आता। आज इतने मुसलमान होने के बावजूद क्यों इतनी रोशनी नहीं दिख रही? کہ ہم تعصبات میں پھنس گئے. لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہمیں ملنی تھی وہ ملی نہیں. پھر ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ یو قد من شجرت مبارکت زیتونۃ, شجر زیتونہ کا شوق نہیں رہا. اور وہ کون سا تیل ہے؟ علم کا تیل ہے. اس وقت جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے دل کے چراغ کو علم کا تیل نہیں مل رہا؟ آپ ایک دن چھوڑ کے دیکھیے کلاس. میں کہتی ہوں آپ سب صرف اس کلاس روم میں اپنے بیٹھنے کے سٹائل پہ غور کر لیں. میں پورے شور سے کہتی ہوں کہ جو اس پہلے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں, ان کو اس پچھلے حصے میں پڑھنے والوں سے زیادہ سمجھ آتا ہے, اور جو وہاں بیٹھتے ہیں ان کو ریسیپشن پہ, اور ریسیپشن میں جو بیٹھے ان کو آفس میں بیٹھے وہ سے زیادہ سمجھ آتا ہے. جیسے چراغ کے جتنا آپ قریب جاتے ہیں نا اتنی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اتنی ہیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, اسی طرح جو بندہ علم کے قریب جاتا ہے نا اتنی اس کی زندگی میں گرم جوشی آتی ہے, ہیٹ اپ ہوتا ہے. ہمیں انفارمیشن تو مل جاتی ہیں, کانوں پہ باتیں ٹکراتے جائیں گی, لیکن اگر اس کے اندر اصل روشنی ہے نا تو پھر علم کا شوق ہونا چاہیے. آج مسلمانوں میں سے اکثریت کو اللہ ماشاء اللہ علم کی محفلوں سے الرجی ہو گئی. وہ کہتے ہیں نہیں, اٹس ٹو ہارڈ, بہت کچھ پھر سننا پڑتا ہے, پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. حالانکہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں, آپ اگر نہیں ہو رہی تو فکر کریں. اور تبدیلی کیا ہے کہ جب یہ اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے نا آپ کے دل میں, تو اس کے بعد آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے. اگر آپ پہلے اکیلے رہ نہیں سکتے تھے, اب آپ کا دل چاہتا ہے کبھی تو مجھے تنہا چھوڑو. آپ ہر وقت لوگوں کو ڈھونڈتے تھے, محفلوں کے عادی تھے, پارٹیاں اور دعوتوں کے تھے. آپ کو اب اللہ کی طرف آنا ہے نا تو آپ کو ضرور اکیلا ہونا پڑے گا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. انسان کو تڑپ ہی یہ رکھ جاتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو, میں ذرا اللہ سے باتیں کر لوں, میں اللہ کو کچھ سنا لوں. اللہ کی باتیں پڑھنی, کبھی اللہ کی باتیں سننی, کبھی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی, یعنی بندے مومن کی زندگی میں ہر وقت اللہ اللہ اور اللہ کا نام آنے لگتا ہے, اور اس کو بالکل اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی. اسی لیے تصوف میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا, تقلیلو, کس چیز میں کمی کرو, کس میں؟ اختلاط مال انام, مخلوق کے ساتھ کھلنے ملنے میں کمی کر لو. ہم سیرت میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی غار حرا میں جانے لگے, آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی, پھر اسی طرح ایک دن فرشتہ آ گیا. ہم کیا کہتے ہیں, بازار میں کھڑے ہیں اور فرشتہ آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہم جب بہت محفلوں کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں نا, ہر وقت ہمیں فن اور گلیمر چاہیے, تو اللہ کی محبت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو کب یاد کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پوچھئے, جب میں اکیلی ہوتی ہوں مجھے کون یاد آتا ہے؟ ماں کو یاد کرتی ہوں, بہن یاد آتی ہے, شوہر یاد آتا ہے؟ نہیں, جس کو اللہ یاد آئے گا نا اس کو اصل میں پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت آ چکی ہے. آپ رہیں اس دنیا میں, کھائیں پئیں دیں لیں, رونے والوں کے ساتھ روئیں, ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسیں, ہر معاملہ کریں, لیکن آپ کا دل آپ کے رب کے ساتھ ہو. نور و نلا نور, دل کی دھڑکنوں سے وہ کام لیں جو لوگ تسبیح کے دانوں سے لیتے ہیں. وہ تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے ہیں نا اللہ اللہ, آپ کے دل کی دھڑکن بولے گی اللہ اللہ اللہ. اور بہت بڑا چراغ چھوٹے چھوٹے چراغوں پر غالب آئی جاتا ہے. ایک چھوٹا سا چراغ بہت زیادہ اندھیرے کو ختم کرتا ہے. اسی لیے اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ بھی کر سکے, خود تو روشن ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ بنی آدم کے دل چار قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے دل صاف شفاف, شیشے کی طرح. فرمایا یہ بندہ مومن کا دل ہے, بہت صاف ہوتا ہے, کوئی کینہ نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, اوپر سے کچھ باہر سے کچھ. دل میں غم اوپر سے مبارک ہو, دل میں کوئی غم نہیں اوپر سے کہ بڑا افسوس ہوا, ایسا کوئی رویہ نہیں ہوتا, بالکل کلین ہے. اس کی زبان بھی صاف, قولن سدیدہ ولی, اور دل بھی صاف. دوسرا دل آپ نے فرمایا کہ غلاف دار اور بندھا ہوا دل ہوتا ہے, غلافوں میں ڈٹا ہوا. کلا بل ران علی قلوبہم, فرمایا کہ یہ کافر کا دل ہے, جکڑ بندیاں اس کے اندر, تعصبات کے اندھیرے ہیں. تیسرا دل آپ نے فرمایا کہ الٹا اور اوندھا, وہ اوندھا یعنی بالکل ہی پلٹ کے رکھ دینا. فرمایا یہ منافق کا دل ہے, بالکل ہی ہر بات ہی اس کو الٹی سمجھ آتی ہے. ذرا امیجن کریں کہ چراغ ہی الٹا ہو جائے تو کیا ہوگا, आग लग जाती है ना, कभी मोमबत्ती गिर जाए तो नीचे रखे हुए कपड़े को भी आग लगा देती है ना। इस तरह मुनाफिक अपने आप को भी आग लगाता है और अपने माहौल को भी गंदा कर लेता है। फिर चौथा दिल, आपने फरमाया फिरा हुआ और डगमगाता हुआ, अभी तक कशमकश चल रही है। इरताब खैफ, अगली आयतों में आने वाली ये बात असल में यह मुनाफिकों को सुनाया जा रहा है कि तुम्हारे दिलों के अंदर अभी भी डावाडोली है। अभी भी तुम कहते हो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। तो बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला हमें दावत देता है कि मैं तो तुमको बुलाता हूँ अपने नूर की तरफ, अब तुम जिधर मर्जी जाओ, शौक से जाओ। आप देखिए कि जितना आपके अंदर चमक बढ़ेगी ना, आप अपनी ज़ात से बेनियाज होंगे। कभी आपने कोई ऐसा फानूस देखा हो, इतनी लाइट होती है कि वो फानूस की जो लड़ियाँ हैं ना वो नहीं दिखती, चमक ही चमक होती है। बिल्कुल बंदा मोमिन का दिल इतना खुल जाता है कि एक वक्त आता है कि वो अपनी ज़ात को नुमाया करने, अपनी आप को बड़ा करने से बेनियाज होकर लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाला होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर खबर रखने वाला, उसको जानता है। तो लिहाजा इस आयत को सुनने के बाद हम सब ने अपने दिल का जायज़ा लेना है। कैसे हम इस बात को लेते हैं, एक और तफसीर इसकी की कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। और वो तफसीर जो है वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिन्होंने काब बिन अखबार से पूछा कि मसल नूर ही का मिशकात में ये किसकी मिसाल है। तो उन्होंने कहा कि ये मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक की है। मिशकात आपका सीना है, जुजाजा यानी कंदील आपका कल्बे मुबारक है, और मिसबाह चिराग़े नबूवत है। और नूरे नबूवत का खासा क्या है कि नबूवत के इजहार और ऐलान से पहले ही इसमें लोगों के लिए रोशनी का सामान है। इसीलिए आपको पता है कि अम्बिया कराम नबूवत से पहले भी कोई गलत काम नहीं करते। फिर वही इलाही और इसके ऐलान का इसके साथ जब इत्तेसाल हुआ तो ये ऐसा नूर हुआ कि नूरुन अला नूर, इसने सारे आलम को रोशन कर दिया। अल्लाह के नबी के नबूवत के इजहार और आपकी बरसत से पहले आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश हुए। रिवायात में आता है कि आपकी माँ ने देखा था उनके जिस्म से एक नूर निकला और दूर तक जाके फैल गया। पास कहते हैं कि जब नबी सल्लम पैदा हुए थे तो मजूसियों की आग बुझ गई थी। तारीखी रिवायत है, खुदा है उनका और वो इसको बड़ा बदशगुन लेते हैं, इसीलिए फिर बाद में वाकई अब्रहा भी कुछ हुआ। तो बहरहाल किस्सा मुखसर यह है कि अल्लाह के नबी को देख ले या अपने आप को देख ले, मनहज एक ही है कि इस दिल को ज़ाया ना करो। ये बड़े ख़ास मेहमान के रहने की जगह है। आप अपने घर के ड्राइंग रूमों को सजाते संवारते रहते हैं, फिर बच्चे वहाँ चले जाएँ तो आप गुस्सा करते हैं, डांटते हैं उनको। इस तरह अपने दिल को हर हास और आम के लिए ना रखें, हर वक्त इस दिल के अंदर नफ़े नुकसान ही ना तोलते रहा करें। यहाँ आ जाएं तो सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाएं। अगर रास्ते की रुकावटें बन रही हैं तो उस वक़्त सोचें जब मुझे रब बुलाएगा उस वक़्त तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। काम हाथों में होंगे, सब कुछ हाथों में होगा, जाना पड़ेगा। तो अल्लाह इस दुनिया में रहते हुए इन्ना लिल्लाह की कैफियत अपने ऊपर तारी करके देखो। आप दिल को साफ करते जाएं, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके दिल में आएगा। आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उस काम से नहीं रोक सकती। आज भी रास्ते में आते हुए मैंने देखा, बर्फ़ का तूफान है आज हमारी तरफ, बिल्कुल आंखें मेरी नहीं खुल रही थी, आंखों को बंद करके मैंने वॉकिंग ट्रेवल किया जहाँ तक बस लेनी थी, लेकिन मैंने देखा कि लोग जा रहे हैं। मैंने सोचा आज तो कोई भी बाहर नहीं होगा। जब बस में बैठी, पूरी बस भरी हुई थी और जो अपने काम पे जा रहे, उस वक्त मैंने सोचा अल्लाह हम सारे कितने खुशकिस्मत हैं कि आज इस मौसम में तेरे लिए निकले हैं, और अल्लाह तो इसको कबूल करना। करके तो देखिए, लोग तो सिर्फ पैसे लेने के लिए निकलते हैं, जॉब्स के लिए निकलते हैं, और लोग तो अपने कामों को नहीं छोड़ते। उनको तो पता है ना कि हमें कुछ इससे मिलना है, तो हमें जो मिलना है, मैंने कहा अल्लाह तो इस चीज़ को कबूल कर ले। ये चीज़ अगर तूने हमारे नसीब में की है, हमसे कभी छीनना नहीं। फिर अब देखिए कि यहाँ थोड़ी सी बात जैतून के तेल के बारे में, जैतून के तेल की बात हुई, पीछे सूरत मोमिनून में भी इस पर बात हो चुकी है कि यहाँ इसको क्यों लिया गया। अब देखिए कि कभी जैतून की बॉटल के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन, सुना मैं? एक होता है बहुत प्योर, एक उससे भी प्योर होता है। वो तेल जो बिल्कुल प्योर होता है ना, जब आप उसको जलाते हैं, और उस दौर में असल में वो चिरागों के अंदर तेल डालते थे, और जैतून के तेल की रोशनी बहुत तेज़ भी होती है, दूसरी बात, इसमें धुआं नहीं होता, और अरब लोग तो इसको सालन की जगह भी इस्तेमाल करते थे, फल के तौर पे भी इसको खाते थे। कहते हैं कि ऐसा तेल है कि इसको निकालने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद निकलता है। और अल्लाह के नबी की एक रिवायत भी आती है कि जैतून का तेल खाया भी करो और अपने जिस्म पर इसकी मालिश भी किया करो, क्योंकि ये शजरे मुबारक है। अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे कि तेल जैतून का है, और ख़ास तौर पे कहा कि ये ला शर्कियत वला गर्बिया वाले दरख्त का है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना, उनको ये चीज़ पता है कि वो दरख्त जो किसी भी बाग के बिल्कुल मिडल में हो, जिसको सारा दिन चारों तरफ से एक जैसी धूप पड़े, अगर शुरू में इधर से पड़ रही थी तो बाद में इधर की पड़ी, यानी पूरे दिन में कहीं ना कहीं से धूप पड़ती है, उसका फल मीठा होता है। और ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है ना, ये उसका होता है कि जो चारों तरफ से धूप खाता है। अगर किसी एक कोने में हो तो हो सकता है कि कुछ हिस्सा उसका धूप से महरूम रहे, उसके फल की क्वालिटी ख़राब होती है। यहाँ बंदा मोमिन के तस्करे में, यहाँ इसका तस्करा क्या है कि जब लोगों को प्योर इल्म मिलता है ना, प्योर वही का इल्म मिलता है ना, तो लोगों के अंदर रोशनी आती है, धुआं नहीं उठता। लेकिन जब प्ल्यूटिड मिलावट वाला तेल लोगों को मिलता है ना दीन के नाम पे, तो नंबर एक घुटन, धुआं, मुगालते, शक, तरद्दुद, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ नहीं आता लोग क्या चाहते हैं, समझ नहीं आता ये ठीक है वो ठीक है। तो ऐसे वक्त में फिर लोग अंधेरों में चले जाते हैं। बस दफ़ा दीन का बड़ा गुरगुला होता है, बड़ी बातें होती हैं दीन की, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं समझ नहीं आती क्या ठीक है क्या गलत है। मेरी किसी से बात हुई, कोई दीन वाली थी, खुद दीन की पढ़ाने की भी काम करती हैं, कहने लगी समझ नहीं आती सच्ची बात है क्या ठीक है क्या गलत है। तो मैंने उनके सामने भी वही बात की जो आपको कह रही हूँ, मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अमल तो बहुत कम है लेकिन मेरे दिल में बहुत सुकून है। मुझे 100% यकीन है कि जो चीज़ अल्लाह ताला मुझे दे रहा है या जो मैं दूसरों को दे रही हूँ, इसमें मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे दिल में कोई डाउट नहीं, अल्लाह का शुक्र है, दिल खुला हुआ है। बस दुआ यही है कि अब अल्लाह ताला नीयत ठीक रखे और अमल की तौफीक दे। जो हम कहते हैं प्योर चीज़ होती है ना, आपको शक ही नहीं होता, आंखें बंद करके ले जाएं, और मिलावट वाली चीज़ अब सस्ती करके लेने भी जाए ना, तो आप लेके भी आपका दिल नहीं खुश होता, बाद में आप कहते हैं छोड़ो सस्ता ही ले लिया, क्या था एक दफ़ा ले लेती, साफ सुथरा महंगा लेती, चलो अच्छा बार बार तो ना लेना पड़ता। कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, यही फ़र्क है सच्ची तालीम का। आपको इसके तकाजे मुश्किल लगेंगे, आपको सब्र करना पड़े, आपको वक्त लगाना पड़े, आपको तर्जमा याद करना है, लेकिन अपनी किस्मत पे खुद रश करें। ज़मीन व आसमान के रब की बात सुन रहे हैं, अल्लाह नूर समावाती वलर, मेरा अल्लाह कि हम खुद को चुटकी काट के भी यकीन दिलाएं तो हम नहीं दिला सकते कि अल्लाह तूने हमारे लिए ये फैसला किया था कि तुम मेरे नूर की तरफ चलो। और ये जो हमारे फोरम का नाम है ना नूरुल कुरान, असल में वो यही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में कुरान का नूर आ जाए, आप चलते फिरते कुरानी और नूरानी बन जाएं। ये झगड़े छोड़ दो कि अल्लाह के नबी नूरी थे कि बशरी थे, ये देखो कि आपकी तालीमात क्या थी, उन्होंने कितने प्यारे अहकामात दिए। तो जिसने इस नूर को आगे पहुंचाना है वही काम करेगा ना, वही सोचेगा ना। अब मिसाल है, चलें इस पे थोड़ी सी बात मजीद करके आगे चलते हैं कि हम सब कुरान सीख रहे हैं, आप फील करें कि अब आपको एनर्जी मिल रही है, आपका दिल नूरानी हुआ, अब क्या करेंगे? आप बताइए कि जब किसी के अंदर पेट्रोल भर दिया, तेल भी डाल दिया अपने अंदर लालटेन के, अब लालटेन से अगर कोई पूछे तो वो क्या चाहती होगी आगे, क्या मुझे जलाया जाए, मैं दूसरों को रोशनी दूं? अपने आप को गवाह बनाते हुए अल्लाह के सामने इस बात का जवाब खुद को दे के लिखें कि अभी तक इतना नूर कुरान का अपने दिल में डालने से किसके दिल में सच्ची तड़प पैदा हो गई है कि मैंने इस इंसानियत के लिए जलना है, मैंने खुद को जलाना है ताकि रोशनी मिले। जलते ही है ना, कभी भूखे रहे, कभी प्यासे रहे, कभी जागे, कभी सर्दी में आए, कभी गर्मी में, ये जलाना ही है। एक शम्मा नहीं हम बन सकते, एक कैंडल, कि मैंने अंधेरा दूर करना है, आप चाहेंगे अल्लाह भी चाहेगा, जिस तरीके से हम सोचते हैं ना उसी तरह अल्लाह हमारे लिए करता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा कुरान पढ़ा ना शौर से, सिलसिला पुराना ही था, लेकिन जिसको बंदा एक शौरी सफ़र करता है ना, तो मैं जब कुरान की क्लास में होती थी ना, तो मेरा जहन अपने उस वक्त से बहुत आगे होता था, सुनती थी, समझती थी, नोट्स भी अल्लाह के हुक्म से एक एक लफ्ज़ लिखने की कोशिश होती थी, लेकिन उस वक्त भी ये कहती थी कि अल्लाह तू बता मैं क्या करूँ, कोई असबाब नहीं थे, कोई हालात नहीं थे, जिसको कहते हैं ना कि दूर दूर तक कोई जहन में तसव्वुर ही नहीं था, कुछ ऐसा भी काम जिंदगी में कर सकते हैं या हम कहाँ जिंदगी में आगे जाएंगे, किसी को नहीं पता होता। लेकिन मैं ये बड़ा सोचती थी कि मेरी इसमें तड़प बड़ी सच्ची है, और मैं कहती थी अल्लाह तू करा। फिर मैंने वहाँ एक मौके पर हज़रत खाजरा का किस्सा सुना, तो उनका एक जुमला मेरे लाशऊर पे, जिसको कहते हैं ना, कंधा हो गया, कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तू मुझे ज़ाया ना करना। क्या इब्राहिम तो कहाँ जंगल में छोड़ने जा रहे हैं, बच्चा साथ है ना, कोई समझ आ रही है बात, ये मुझे बता भी नहीं रहे क्यों छोड़ रहे हैं। अल्लाह फिर तुझे पता है, अगर तूने ये हुक्म दिया तो फिर अब मुझे यहाँ जंगल में ला के फिकवा ना देना, मुझे ज़ाया ना करना। और आप देखिए एक पूरी नस्ल वहाँ से आबाद हुई। ये जो कुरान के दौरान के आपके वक्त है ना, अगर इस वक्त आप बिल्कुल बगैर किसी नियत, कमिटमेंट और महसूस किए उठ के चले गए ना यहाँ से, तो यकीन करें बड़ा मुश्किल होगा वापस पलटना। कमिटमेंट्स करें, खुद से भी मत रहम खाएं, मत पिटी फील करें। खुशकिस्मत हैं आप, इसी तरह चुनाव होता है। आपको पता है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ना, अमेरिका की ले लें, कनाडा की ले लें, पाकिस्तान की ले लें, जब लास्ट ईयर होता है ना स्टूडेंट्स का, उसी दौरान अच्छे स्टूडेंट्स को जॉब्स ऑफर्स हो चुकी होती हैं। कई लोगों को मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते होंगे, इधर पेपर ख़त्म हुआ और उससे पहले उनके पास कई ऑफर्स थी और जॉब लग गई। और जो बेचारे नत्थू फत्थू खैरे होते हैं, वो बेचारे डिग्रियां लेके भी फिरते हैं, कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती। दुआ करें कि अल्लाह आपको इस नूर के साथ इस तरह जोड़ दे कि आप लोगों के अंधेरे दूर करने के लिए चलते रहें। लेकिन याद एक और बात भी रखिएगा कि लैम्प कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, जब तक बिजली के साथ कनेक्ट नहीं करते ना, अंधेरा रहता है। इसी तरह अगर आप बल्ब कितना भी प्यारा ऊपर लगा दें, पीछे से कनेक्शन बंद कर दें, कनेक्शन नहीं लगता ना तो रोशनी नहीं होती। इसी तरह अगर हम इल्म के नाम पे इल्म बहुत भी ले लें, दुनिया की डिग्रियां, दीन की डिग्रियां, इवन तर्जमा, लफ्जी तर्जमा, असाइनमेंट, लेकिन अगर अल्लाह से कनेक्ट नहीं है ना तो हम नहीं चमकेंगे। हर कुरान पढ़ने वाला नहीं चमकता, ये भी याद रखिए। मुशाहिदा इसका गवाह, हज़ारों लोग कुरान पढ़ते हैं हर साल और उसमें से चंद लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से चुने जाते हैं। और एक और बात कि जहाँ रोशनियों की बात है, तो कुरान पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल लोग होते हैं, जिनको लोग आजकल क्या कहते हैं, ये बड़े बैकवर्ड है, मुतस्सब है। रोशन ख्याल अगर आपने होना है ना, ऑप्टोमिस्टिक होना है, अगर पुर उम्मीद रहें, अच्छी बातें करें, कोई दीन आपको दुनिया से काट के किसी एक अलग हुजरे में बंद करने के लिए नहीं आया। अफसोस की बात है कि आज जो जितना कुरान से, दीन से दूर हो, उतना उसको रोशन ख्याल कहते हैं।